अध्याय तीन, निबंध और आलोचना। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। सांस्कृतिक चिंता, सौंदर्य बोध, साहित्य का गतिशील चिंतन। सांस्कृतिक चिंता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सांस्कृतिक चिंता कोरी बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि के उन्मेष की वह सृजनात्मक परिणति है, जिसे अपनी सांस्कृतिक परंपरा की पहचान के लिए उन्होंने आर्य और आर्येतर कला संस्कृतियों के अध्ययन क्रम में विविध साहित्यिक निबंधों, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद तथा कालिदास की लालित्य योजना जैसी साहित्य साधनाओं से अर्जित किया है। आधुनिक राष्ट्रीय नवजागरण के पश्चात अपनी सांस्कृतिक परंपरा के मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन का एक लंबा दौर दिखाई पड़ता है, जिसमें भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास संबंधी अनेक सवाल उठ खड़े हुए थे। इन सवालों की अपेक्षा में भारत की राष्ट्रीयता को तरह तरह से पहचानने का प्रयत्न किया जा रहा था। वैज्ञानिक प्रगति की इस आधुनिक युग में मानव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और व्यक्ति मुक्ति की मध्ययुगीन अवधारणा का स्तर सामाजिक मुक्ति के आधुनिक विचारधारा के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका था। यही कारण है कि आज़ादी के बाद सांस्कृतिक विरासत का सवाल अहम सवाल बन गया था और क्षेत्रीयता, भाषा, धर्म, संप्रदाय और जातिगत विभिन्नता के अनेक सवाल उससे टकरा रहे थे। संस्कृति का सवाल हमारी भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए भाषा की राष्ट्रीयता और साहित्य की सौदेश्यता तथा उसकी भविष्योन्मुखी दिशा के निर्धारण में भारतीय बुद्धिजीवियों के पुनरुत्थानवादी और क्रांतिकारी स्वर एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे थे। कहना न होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन तमाम सामाजिक परिवर्तनों के बीच से उठ खड़े हुए कला संस्कृति और सौंदर्य बोध संबंधी अपने समकालीन सवालों से बेखबर न थे। सांस्कृतिक परंपरा का मूल्यांकन उनकी समुची साहित्य साधना की केंद्रवर्ती प्राणधारा है और इतिहास मनुष्य की जय यात्रा की विकास का था। इस इतिहास यात्रा का शिलालेख लिखते हुए आचार्य द्विवेदी कहते हैं, इनवर्ट कामा, मनुष्य के उत्थान पतन का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। न जाने कितने मूलों से मनुष्य ने अपना धर्म विश्वास संचय किया है। जातिगत और संप्रदायगत संकटताओं से जर्जरित काल में यदि हम जान सकें कि मनुष्य कितना ग्रहणशील प्राणी है, वह किस निर्भरता के साथ संस्कृति के साथ चिपटे हुए सड़े छिलकों को फेंकता आया है और किस दुर्वार शक्ति से अन्य श्रेणियों के सत्य को ग्रहण करता आया है, तो यह कम लाभ नहीं है। इनोटकामाबंद कल्पलता। जाहिर है कि जातिगत और संप्रदायगत संकटता के इस युग में अपनी संस्कृति परंपरा की ही की सही पहचान अपने आप में एक कठिन चुनौती है। केवल धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हम नहीं जान सकते कि हमारे विश्वासों का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ। इसके लिए पुरातत्व, भाषा विज्ञान, त्रितत्व शास्त्र और इतिहास के विच्छिन्न परंपरा का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि इनोटकामा हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों सी दिया गया है कि उसे प्रांतीय सीमाओं में बांध कर सोचा ही नहीं जा सकता। उसका एक टांका यदि काशी से मिल गया तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा, और यदि पांचवा मालाबार या सिलोन में मिल जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। इनोटकामाबंद कल्पलता। आचार्य द्विवेदी के समय भारतीय संस्कृति को अखंड और शाश्वत मानकर धार्मिक सांप्रदायिक व्याख्याओं द्वारा अनेक भ्रांतिपूर्ण स्थितियां उत्पन्न की जा रही थी, इसलिए साहित्य चिंतन से हटकर भी उन्होंने संस्कृति के सवाल पर गहराई से विचार किया है। परस्पर विरोधी मान्यताओं से टकराते हुए उन्होंने आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति और उसकी शुद्धता, सांग्रहकता जैसी अवधारणाओं का विकास कर एक ऐसी सामासिक संस्कृति की अवधारणा का विकास किया जिसका अंतिम लक्ष्य था विश्व संस्कृति की प्रतिष्ठा। इस संबंध में अपनी संस्कृति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैं संस्कृति को किसी देश विशेष या जाति विशेष की मौलिकता नहीं मानता। मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों की एक सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है। यह दूसरी बात है कि वह व्यापक संस्कृति अब तक हमारे सारे संसार में अनुभूत और अंगीकृत नहीं हो सकी है। इनोटकामाबंद अशोक के पूर्व। निश्चय ही सांस्कृतिक संबंधों की अंतर्राष्ट्रीय संभावना के तलाश के पीछे उनका गतिशील चिंतन और उदार दृष्टिकोण विद्यमान है। आचार्य द्विवेदी ऐसे लोगों से पूरी तरह असहमत हैं जो व्यापक ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव में किसी खास मतवाद या विचारधारा को ही हिंदू रीति नीति मानकर बनी गहरी समझ से हिंदू संस्कृति की व्याख्या करते हैं। ऐसे लोग अपने वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर से आंखें मूंद कर अतीत के गौरवगान में खोए रहते हैं और अपने शुद्धतावादी अहंकार के कारण किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन और गतिशील चिंतन को देखकर वे भड़क उठते हैं। इनोटेड कामन। हमारे यहाँ उनका अमोघ ब्रह्मास्त्र है जिससे किसी को भी धराशायी किया जा सकता है। इनोटेड कामन। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव उनका ऐसा बहुधा विघोषित निंदा वाक्य है कि जिस किसी विचार को परास्त करने के लिए यह एक वाक्यांश बहुत काफी समझा जा सकता है। यह प्रायः ही भूला दिया जाता है कि हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा ज्ञान रत्नाकर नहीं है। किसी एक ही विचार को भारतीय विचार कह देना न केवल अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन है बल्कि अपने देश की विशाल ज्ञान परंपरा का अपमान करना भी है। इनोटेड काम विचार प्रवाह। संस्कृति जातिगत और देश के संस्कारों का संग्रह नहीं बल्कि उनके बिगड़ने और बनने की परंपरा है। अतः हमारे यहाँ वाला यह प्रबल संस्कार विवेक को दबोच कर अंततः वर्जनशीलता का सीमित दायरा बनाकर उसमें शुद्धता के अहंकार को जन्म दे देता है। इसीलिए क्षुब्ध होकर आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, इनपुट कामा, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की जिज्ञासा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इनोटेड कामन। अशोक के फूल। नाना आघात प्रतिघात को झेलते हुए मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप आचार्य द्विवेदी ने केवल साफ साफ देख लेते हैं बल्कि मध्ययुगीन संस्कारों के प्रति मोहग्रस्त आधुनिक भावुक संप्रदाय को भी उस प्रेरक शक्ति का साक्षात्कार कराते हैं। इनोटेड कामन। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवनधारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इनपुट कामन। अशोक के फूल। ग्रहण और त्याग किसी संतुलित दृष्टि से आचार्य द्विवेदी भारतीय संस्कृति की विकास परंपरा का मूल्यांकन करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज का भारत नाना जातियों धर्मों संप्रदायों और मतवादों के परस्पर संघर्ष और सृजन का परिणाम है। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में भारत की सांस्कृतिक परंपरा एक विकासशील प्राणधारा है और इसीलिए वे चिंतित हैं कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। संस्कृति को एक अखंड शाश्वत परंपरा मानकर उसके प्रति आसक्त आज के भावक समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा है, इनोटेड कामा, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं क्या ऐसे ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को वैराग्य को इतना महार्ग समझा था वह समाप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि मुड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई, तो क्या वह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। इनोटेड कामन। अशोक के फूल। इस भविष्योन्मुखी दृष्टि के निर्माण में वर्तमान की चेतना और अतीत की प्रेरणा है। हिंदू संस्कृति में शुद्धता और उदारता देखने वाले मानव जाति के संघर्षपूर्ण इतिहास को बड़ी सपाट ढंग से पेश करते हैं। उसकी व्यापक छानबीन करने के क्रम में आचार्य द्विवेदी यह देखते हैं कि देश में अनेक आर्य पूर्वी जातियां निवास करती थी। उनकी अपनी भाषाएं थी और अपने विश्वास थे। इस देश में आने के साथ ही आर्यों की इन जातियों से भयंकर संघर्ष करना पड़ा था। पुराणों में असुरों दैत्यों और राक्षसों के साथ इन प्रचंड संघर्षों की कथा मिल जाती है, किंतु धर्मग्रंथों के साक्ष्य पर पराजित जाति की लुप्त परंपरा का प्रमाणिक परिचय नहीं मिल पाता। इसमें से इनोटेड कामा जो गर्वीली थी हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज थी सहज मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और अपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर राक्षस दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर वानर भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। इनपुट कामाबंद। अशोक के फूल। ये जातियाँ धीरे धीरे आर्य भाषा भाषी होती गईं, लेकिन कुछ अंत तक पहाड़ों जंगलों और दूरवर्ती स्थानों में आश्रय लेकर अपनी भाषा और धर्म विश्वासों को किसी प्रकार जिलाए रख सकी। इन आर्यतर जातियों का भारतीय साहित्य और धर्म साधना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इनपुट कामा। सबसे अधिक आर्यतर संश्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता में चित्रित सांची भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियाँ आर्योत्तर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने से जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं। एक में तेज दक्षता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अनुभव प्रभाव पड़ा है। पता चलता है कि सांची भरत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं इनकी देवी देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का विस्मित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनके घर का स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनमें से और उन्हीं की तरह अन्य आर्यतर जातियों के महाकवि ने ली है। इनका दूसरी परंपरा की खोज। उत्तर भारत में आज बिना पूजा की परंपरा विद्यमान है। आधुनिक युग में पाई जाने वाली लोक जातियाँ अनेक लोक कथाओं, विभिन्न जातियों के रीति रिवाज, उपासना पद्धति और धर्म विश्वास आदि के साथ विस्तृत परंपरा की न जाने कितनी स्मृतियाँ लिपटी हुई हैं। भारतीय संस्कृति के मूल चरित्र की पहचान इन्हीं लोक परंपराओं के माध्यम से संभव है। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक परंपरा के मुकम्मल पहचान के लिए साहित्य ग्रंथों की तुलना में लोकगीतों, लोक गाथाओं, लोकनाट्यों, कहावतों, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकभाषा के अध्ययन को ज़्यादा प्रामाणिक और महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत के एक एक गांव अपने भीतर न जाने कितने ऐतिहासिक पुरातात्विक स्मृति चिन्ह समाहित किए हुए हैं। आचार्य द्विवेदी ने मेरी जन्मभूमि शीर्षक लेख में लिखा है कि यदि मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। और बिना सुविधा के ही उन्होंने अपनी जन्मभूमि की लोक परंपरा की जिस ऐतिहासिक छानबीन की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक इतिहासकार भी इसे स्वीकार करते हैं कि भारत की संस्कृति के निर्माण में द्रविड़ सभ्यता का बहुत योगदान है। हड़प्पा के लोग जन क्षमता के प्रतीकों देवी माता, सांड, नंदी, शुंगमय देवता तथा पवित्र वृक्षों की पूजा करते थे और आज भी हिंदुओं की पूजा में इनका समावेश है। धार्मिक विश्वास के अधिक अमूर्त ब्राह्मण संप्रदाय जो वेदों पर आधारित थे केवल कुछ शक्तियों को व्यक्तियों को आकर्षित कर सके और उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति के दार्शनिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अधिकतर व्यक्तियों ने धर्म और उपासना के अधिक पार्थिव रूपों को ही अपनाया। भारत का इतिहास रोमिला थापर। यही कारण है कि आचार्य द्विवेदी मध्ययुगीन हिंदी साहित्य की लोक साहित्य कहते हैं जिसमें भारत की सामाजिक संस्कृति का अभिव्यक्ति हुई है। शास्त्र और धर्म ऊपरले स्तर के कुछ बुद्धिजीवियों को बस आकर्षित कर रहे थे किंतु साधारण जन समुदाय उसका कायल न था। आज का भारत इन्हीं नाना जातियों का महामानव समुद्र है। उसकी सामाजिक संरचना बहुत जटिल हो चुकी है। अपने युग सत्य की अभिव्यक्ति करने वाली भारतीय शास्त्रीय मान्यताएं शाश्वत नहीं हैं। रक्त और गोत्र की शुद्धता की अपेक्षा में स्थापित वैवाहिक संस्था उस युग की परिस्थितियों की देन थी और आज की परिस्थितियों ने ही उसे नष्ट कर दिया है। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं नगर नगर और ग्राम ग्राम में गुप्त और प्रकट रूप से स्थापित वेश्यालय मानो हमारी वैवाहिक संस्था के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। वे मानव डंके की चोट घोषित कर देना चाहते हैं कि यह वैवाहिक विधान कृत्रिम है, कुटिल है, अधर्म संश्लिष्ट है। इस पर वर्तमान युग के विधवाश्रम, अनाथ नारी सदन और गुप्त जनन मंदिर तो गला फाड़ फाड़ कर अब ब्राह्मण्य का तुमुल उद्घोष कर रहे हैं। कुटज आचार्य द्विवेदी देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में दलितों का अस्तित्व वर्णाश्रम व्यवस्था गति को अवरुद्ध कर चुका है। शताब्दियों से उन्हें पैरों के नीचे दबाया गया था, आज उन्होंने पैर पकड़ रखा है। सामाजिक परिवर्तन की क्रांतिकारी चेतना समाज को आंदोलित कर रही है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों को धार्मिक दृष्टि से देखने वाला भाव संप्रदाय शास्त्रों के द्वारा इनका समाधान करना चाहता है। उसे लगता है कि यह सब शास्त्र मर्यादा, जाति मर्यादा और धर्म मर्यादा के लुप्त हो जाने का परिणाम है। इसीलिए धर्म के नाम पर हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है। स्त्रियों के पैरों को जूतियों से भी अधम स्थान दिया जा रहा है। गरीब जनता के रक्त कणों का सत्व, लाखों और करोड़ों के शुमार की जाने वाली संपत्ति मठों, मंदिरों, तीर्थों और यज्ञों के रूप में स्वाहा की जा रही है। न जाने क्या क्या अनर्थ हो रहा है। धर्म के नाम हमने जो व्यवस्था कायम की थी वह ढह चुकी है, बर्बाद हो गई है। इतिहास की प्राणधारा को नजर अंदाज कर केवल भौगोलिक चौहद्दी को ही भारतीय संस्कृति मानकर प्रतीक पूजा करने वाले लोग ही संस्कृति पर ज्यादा मुग्ध हैं। कदम कदम पर उन्हें संस्कृति पर खतरा मंडराता नजर आता है। इस प्रकार के इंटरनेट का भावुक विचार रखने वाले समूह की एकमात्र सबसे प्यारी चीज अपनी संस्कृति है। देश विदेश शासन से आक्रांत हैं उन्हें तो विदेशी मालों से बाजार पटा है कुछ चिंता नहीं, मगर रक्षा करो इस भारतीय संस्कृति की। देखो यह हिंदू संस्कृति के विदेशी संस्कृतियों से पतित न होने पावे। मकान चूता है कुछ चिंता नहीं, पर देखना उसकी मरम्मत करने की झोंक में वह ऊपर का मुंडेर खराब न हो जाए। यही भर तो बच गया है, सब तो लूट चुका। इस तरह के विचार रखते हैं हिंदू संस्कृति प्रेमी इंटरकाबन उटज। इसलिए आचार्य द्विवेदी संस्कृति को भावुक दृष्टि से न देखकर उसके मूलगामी सामाजिक परिवर्तन को महत्व देते हैं। यथास्थितिवादियों की प्रतिगामी दृष्टि को वे सामाजिक विकास के लिए अनर्थकारी मानते हैं। उनका कहना है कि एक ओर जहाँ आमूल परिवर्तन की आवाज़ आ रही है, वहीं दूसरी ओर परिवर्तन शब्द से ही लोहा लिए जाने की तैयारी हो रही है। कुटज, और यह देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि यथास्थितिवादी इन संस्कृत प्रेमियों को पहचानने वाली यह मूलगामी संस्कृति दृष्टि मुक्तिबोध की दृष्टि से काफ़ी मिलती जुलती है। मुक्तिबोध ने लिखा है एंटोटकामा, आज भारतीय संस्कृति का नारा उन लोगों का है जो जनता के क्रांतिकारी दृष्टिकोण को रूसी दृष्टिकोण कहकर लोगों का ध्यान वर्तमान जनजीवन के यथार्थ के तगाजों से हटाते हुए उन पुराने माया लोक में अटकाना चाहते हैं, जहां भूखी जनता को अनुशासन में रहने की भारतीय संस्कृति के अनुसरण की दिन रात नसीहत दी जाती है। मुक्तिबोध रचनावली, आज जातिवाद गुरु रूप धारण करता जा रहा है। मध्ययुग में उसका स्वरूप धार्मिक और सामाजिक था, अब उसने सामाजिक और राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। लेकिन औद्योगिक सभ्यता के विकास और उसके प्रभाव के घनीभूत हो जाने के साथ ही जातिवाद की व्यवस्था भी टूटती जाएगी। मध्ययुगीन संतों और सूफियों ने सामाजिक संस्कृति की नींव डाली थी। उन्होंने अपनी जाति धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का स्वर बुलंद किया। जिस मनुष्य सत्य को स्थापित किया था वह सुधारवाद में परिवर्तित हो गया और पौराणिक धर्म से वर्ण धर्म की रक्षा की गई। आधुनिक नवजागरण में भी धार्मिक पुनरुत्थानवादी चेतना ने अनेक सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने समाज के अनेक पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाया अधिक सब एक संप्रदाय बनकर रह गए। आचार्य द्विवेदी ने लक्ष्य किया था कि सुधारवादी आंदोलनों से जातिवाद की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। उन्होंने लिखा है एंटोटकामा, इस देश में बहुत से साधु मना व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि वेद पढ़ा देने या जनेऊ पहना देने से इन जातियों को उद्धार हो जाएगा। बहुत से लोग इनका छुआ अनग्रहण कर लेने के कारण अपने को बड़ा सुधारवादी समझते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। जन जागृति जिस दिन सचमुच होगी उस दिन ऊंची मर्यादा वाले इनका उद्धार नहीं करेंगे, ये स्वयं अपनी मर्यादा उच्च बनाएंगे। वह एक अपूर्व समय होगा जब शताब्दियों से पददलित निर्वाक निरंतर जनता समुद्र के लहरियों की फुत्कार के समान गर्जन से अपना अधिकार मांगेगी। उस दिन हमारी सभी कल्पनाएं न जाने क्या रूप धारण करेंगी, जिसे हम भारतीय सभ्यता हिंदू संस्कृति आदि स्पष्ट बुलाने वाले शब्दों से प्रकट किया करते हैं। निस्संदेह यह जागृति धर्म और समाज सुधार का सहारा नहीं लेगी, वह आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करेगी। एंटोटकामा, अशोक के फूल। जाहिर है कि आचार्य द्विवेदी इतिहास के स्वाभाविक दिशा को पहचानते हुए भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति का स्पष्ट बुलाने वाले शब्दों का अतिक्रमण कर क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति सच्चे हृदय से आस्थावान हैं। उनके इस ओजस्वी वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए डॉ. शिव कुमार मिश्र ने लिखा है एंटोटकामा, यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का उद्धरण नहीं है, आचार्य द्विवेदी की वाणी है। इतिहास के भावी गतिविधि के प्रति आश्वस्त जो सच्चाई जो निर्भीकतापूर्वक कह सकने की क्षमता से उत्प्रोत है, ऐसी अकृत्रिम निश्चल सात्विक सच्चाई की नोक पर टिकी अपार संवेदनशील और उदात्त तथा ओजस्वी वाणी का धनी स्वयं उसे जन्म देने वाली उतनी ही प्रखर मेधा मनस्विता तथा क्रांति धर्मिता का स्वामी ही कबीर जैसी अग्निगर्भा पुस्तक लिख सकता है। दस्तावेज, हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति अंक। आर्थिक स्रोतों और राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रति आशान्वित और आश्वस्त होने के बावजूद आचार्य द्विवेदी यह मानते हैं कि समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन अभी आरंभिक अवस्था में है, क्योंकि एंटोटकामा उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में चले गए हैं और उनके हथियाने में जिस बौद्धिक कौशल की आवश्यकता है उसे मनुष्य एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत उचित अवसर पर ही प्राप्त कर पाता है। उन दिनों प्रगतिशील चिंतकों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मान रहे थे कि किसान और मजदूर वर्ग चेतना हो गए हैं और सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार है। आचार्य द्विवेदी उसे पेटेंट दवाइयों की तरह एक प्रोपेगंडा मान रहे थे। उनका तर्क था कि एंटोटकामा, अब भी हिस्टीरिया की दवा ओझे का डंडा है, मलेरिया में अभी भी लोबान और लाल मिर्च का धुआं उपाधियां समझा जाता है, गंडे ताबीज की अमोघता में कोई भी अंतर नहीं आया है। एंटोटकामा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ। इसी प्रकार तत्कालीन समाज में होने वाले भयंकर क्रांतिकारी परिवर्तनों को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा था एंट्रकामा। अभी तक यह समाज इस क्रांतिकारी विचार के महाभार को सम्मान के योग्य नहीं हुआ है। इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसके कंधे दुर्बल हैं, उनकी छाती धड़क रही है। एंट्रकामा बंद। जाहिर है कि आचार्य द्विवेदी किसान मजदूरों की क्रांति को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखते हुए यह अनुभव कर रहे थे कि वर्ग चेतना के अभाव में वर्ग संघर्ष की बात करना एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा मात्र है। उस समय डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आचार्य द्विवेदी के इस वक्तव्य में निराशावादी स्वर का संधान करते हुए टिप्पणी की थी। एंट्रकामा, जनता के क्रांतिकारी फौज के लिए समझना कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और वह लड़ने के नाकाबिल है, यही मानते रखता है कि अभी कुछ दिन तक और हमें पंडितों के पंचायत में एकादशी व्रत की चर्चा करनी चाहिए। इनोटेड कामन, प्रगति और परंपरा। प्रोपेगंडा, मार्क्सवादी रणनीति का आवश्यक अंग हो सकता है, लेकिन पंडितों की पंचायत लिखने वाले आचार्य द्विवेदी उसके कायल न थे। तब जहाँ डॉक्टर शर्मा को जनता क्रांतिकारी फौज लग रही थी और आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में वो अपने दुर्बल कंधों पर क्रांतिकारी विचार के महासागर को संभालने लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ी हुई जनता की स्थिति और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आचार्य द्विवेदी की दृष्टि इतनी साफ थी, समय की कसौटी पर उसकी सच्चाई आज स्पष्ट हो चुकी है। इसका कारण यह है कि आचार्य द्विवेदी में वर्तमान और भविष्य के विकासशील संबंधों की ठीक से पहचानने की क्षमता थी। उनकी संतुलित दृष्टि के महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है एंट्रकामा, यह ठीक है कि वर्तमान की आंख से अतीत और भविष्य को देखते हैं, लेकिन नवीनता के नशे में जूझने वाले ऐसे अंधे आधुनिकतावादी नहीं है जिनका कोई कल न बीता हुआ और न आने वाला नहीं होता, केवल वर्तमान होता है। वर्तमान का भी केवल क्षण होता है। द्विवेदी जी इतने उतावले क्रांतिकारी भी नहीं है जो अतीत और वर्तमान को भूल कर केवल भविष्य के सपनों में खोया रहता है। आलोचना, यही कारण है कि आचार्य द्विवेदी जीवन की गंभीरता समझ जाने वाले प्रश्नों से टकराते समय अतीत वर्तमान और भविष्य के विकासशील संबंधों को सदैव याद रखते हैं। विश्व इतिहास की स्वाभाविक दिशा को पहचानने में आचार्य द्विवेदी अपने वर्तमान युग के सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार करते हैं और पाते हैं कि पूर्व और पश्चिम के दोनों क्षेत्रों में जनता की शक्ति बढ़ी और साम्राज्यवादी शक्तियाँ हतवीर्य होती गई हैं। इन कामा, इतिहास विधाता की योजना उन बुद्धिमानों की योजना से बिल्कुल भिन्न मालूम पड़ रही है जो जनशक्ति को दबाकर मनमानी करना चाहते हैं। संपूर्ण जगत की जन जागृति को देख कर जहाँ अपार आनंद होता है, वहाँ दुश्चिंता अपनी ओर देख कर हो रही है। क्या हम जन जागृति को सहन करने योग्य शक्ति पा सकेंगे? एंट्रकामापन, अशोक के फूल। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के सामने स्पष्ट हो चुका है कि व्यवसाय के कमल को पुष्ट करने वाली साम्राज्यवादी शक्तियाँ अब व्यापार जनशक्ति को दबाकर मनमानी नहीं कर सकती। काल्पनिक भारत माता का जय निनाद करने वाले बूढ़े लोगों के लिए भारतवर्ष अर्थविहीन एक शब्द मात्र रह गया है। वे यह समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं कि एंट्रकामा, भारतवर्ष उन करोड़ों दलित और मुक्त जनता से अभिन्न है जिन्हें छूने से भी आप पाप अनुभव किया जाता है। एंट्रकामापन, इसी मूक जनता की आवाज़ उठाना और दिल खोल कर उनका पक्ष प्रस्तुत करना आचार्य द्विवेदी की सांस्कृतिक चेतना का मूल स्वर है। सौंदर्य बोध, आधुनिक साहित्य संस्कृति और कला मूल्यों से संबंधित सवालों के परिप्रेक्ष्य में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन साहित्य को ठीक से समझने समझाने के लिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सुर साहित्य और कबीर जैसे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और कालिदास की ललित योजना के माध्यम से उन्होंने भारतीय कला मूल्यों और सौंदर्य बोध के सांस्कृतिक धरातल को पहचानने का प्रयत्न किया। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो पहले भारत के कला विलास के नाम से लिखी गई थी, न केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा बोध के उदय का प्रमाण है बल्कि भारतीय इतिहास में बोध की परंपरा के उदय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर मैं अरविंद और कुमार स्वामी के अवदान को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। इन आचार्यों ने भारतीय कला चिंतन की विश्व दृष्टि की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और उसके पांडव के दृष्टिकोण पर बहुत विस्तार से विचार किया था और आचार्य द्विवेदी उससे अपरिचित नहीं थे। प्राचीन भारत की कला विलास को तत्कालीन सामाजिक जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास द्विवेदी जी की संतुलित दृष्टि और परंपरा के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्थान बिंदु है। आज कला और सौंदर्य बोध की संस्कृति का जो रूप हमारे सामने उपलब्ध है, द्विवेदी जी की दृष्टि में वह आर्य और आर्यतर जातियों के संघर्ष तथा उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के संस्रव का परिणाम है। द्विवेदी जी यह भी लक्षित करते हैं कि यह संस्रव कला के क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति को वे मुख्यतः तीन सांस्कृतिक मूल्यों आर्य, द्रविड़ तथा नाग यक्षों का महान अवदान मानते हुए स्पष्ट करते हैं कि उसमें प्राप्त कला सौंदर्य के विकास में मुख्यतः नागों, यक्षों तथा द्रविड़ों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। परंपरा को शाश्वत और अखंड मानकर इकहरी दृष्टि से उसमें शुद्धता के तलाश करने वाले संकीर्णतावादियों से टकराते हुए आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का पुनर्मूल्यांकन कर यह निष्कर्ष निकाला कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। बंद अशोक के फूल। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। स्पष्टतः आचार्य द्विवेदी ने शुद्धता के नाम पर प्रचारित आर्य संस्कृति के संकीर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध आर्य और नार्य तत्वों की द्वंद्वात्मक परिस्थितियों के बीच से जिस गतिशील सांस्कृतिक प्राणधारा को रेखांकित किया वह उनकी दृष्टि से उन्मेष की सृजनात्मक परिणति है, जिसे उन्होंने आर्यतर कला संस्कृतियों के अध्ययन क्रम में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कालिदास की लालित योजना तथा साहित्यिक निबंधों की साधना से अर्जित किया था। इसमें गुरुवर रविन्द्र का महामानव, कालिदास का सौंदर्य शैवागमों का गतिशील चिंतन, श्री शिक्षा और लालित्य है तथा साथ ही द्विवेदी जी के लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का जीवित अनुभव है। इन सब के आधार पर ही अपने ग्रहण और त्याग के विवेक से उन्होंने शुद्धता के नाम पर प्रतीक पूजा करने वाले जड़ परंपरा के वृथा मोहों को रोंती चली आ रही मनुष्य की निर्मम जीवनी शक्ति को रेखांकित किया और आधुनिक समाज को अपनी गतिशील परंपरा का साक्षात्कार कराया। इसलिए भी आवश्यक था कि मध्यकालीन भक्ति साहित्य के मूल्यांकन में परंपरा पूजा की दृष्टि से निर्गुण भक्ति आंदोलन को अवैधिक और परंपरा बाह्य तथा बृहत्त्रयी द्वारा समर्थित सगुण भक्ति काव्य को ही अपनी परंपरा के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, सगुण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्त कवियों को प्रेम और सौंदर्य को सूफियों के प्रेम से प्रभावित अभारतीय प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा था। आचार्य द्विवेदी ने इन सबका प्रत्याख्यान करते हुए हिंदी भक्ति काव्य को अपनी ही परंपरा के स्वाभाविक विकास के रूप में एक जाति धर्म निर्विशेष आंदोलन माना और सूरदास के सौंदर्य बोध को कालिदास के सौंदर्य चेतना, प्रिय सौभाग्य फला ही चारिता के अग्रे विकास के रूप में स्वीकार किया। परंपरा के मूल्यांकन में आचार्य द्विवेदी द्वारा स्थापित सौंदर्य बोध की संस्कृति वस्तुतः जयशंकर प्रसाद की उस सांस्कृतिक परंपरा का अगला विकास है, जिसमें उन्होंने सौंदर्य बोध के विकसित होने की परंपरा को ही संस्कृत के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने आचार्य द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद की सांस्कृति संबंधी व्याख्याओं से प्राप्त समान सूत्रों का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथक की आर्य से चिड़ी सुली है कि इसके ध्वजधारियों को सुंदर से परहेज है। उनके अंतर को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं, नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया। एक ही परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, दूसरी परंपरा की खोज। जाहिर है कि भारतीय संस्कृति में जो कुछ सुंदर है उसमें आर्यतर तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए आर्य मिथक के आक्रांत जो लोग सुंदर से आंखें चुराते हैं वे अपनी कला संस्कृति का अपमान करते हैं। शुद्धता के दम और नैतिक थोथेपन से मुक्त होने के कारण एक सर्जक इतिहासकार की तरह आचार्य द्विवेदी उसके लोकव्यापी प्रभाव और साहित्यिक समृद्धि की उपेक्षा में उस कलात्मक सौंदर्य की पहचान करते हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के आरंभ में उन्होंने कलात्मक सौंदर्य को उच्छृंखल सौंदर्य से अलगाते हुए स्थापित किया कि प्रेम और सौंदर्य में सामंजस्य होता है। उन्होंने लिखा है, थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग में सदा सर्वदा नहीं जुटाता। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम और सौंदर्य को विभेदक विलास के वस्तु मानने वाले आचार्य से द्विवेदी जी की दृष्टि कितनी भिन्न है। वे रीतिकालीन श्रृंगारिक से भिन्न विलासता, सूर और मीरा के प्रेम की कलात्मकता को ठीक से पहचान पाते और अपने उपन्यासों में क्लासिकी संयम से बड़े प्रेम के रोमांटिक आवेग को बड़ी कलात्मकता के साथ चित्रित करते हैं। उनको उपन्यास कलात्मक सौंदर्य के प्रतिमान स्थापित करते जान पड़ते हैं। संयम और विवेक उस सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य को देख परखने के प्रतिमान है। सौंदर्य का सृजन और उसका सम्मान वही कर सकता है जो अपनी मर्यादा को संसार की सारी सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरे विश्वास के साथ घोषित करते हैं कि नवलकामा जो अति सुंदर की रक्षा और सम्मान करता करना नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले पर कला तक कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होगा। नवलकामा बंद। इस कलात्मक सौंदर्य के भी कामसूत्र की अश्लीलता ढूंढ निकालने वाले थोथे नैतिकतावादियों को लक्ष्य कर मुक्तिबोध ने लिखा था। नवलकामा जो लोग रोमांस को सामाजिक संबंधों से हटकर उसे मात्र व्यक्तिगत करार देते हैं वो यह नहीं जानते कि रोमांस का अर्थ मात्र प्रधान समाज में कुछ भी नहीं था। उन दिनों इसका अधिक से अधिक यह अर्थ हो सकता था कि कुछ काल के लिए एक पुरुष एक स्त्री से अधिक हार्दिकता अनुभव करे, किंतु उसका काम संबंध जितनों से ही एक साथ रह सकता था और उन दिनों उसका प्रेमी कदाचित ही इसे संबंध से कोई दूसरी राय रखे। सामाजिक नियम को भंग करने वाले के लिए अपनी जान गंवाने का धोखा हमेशा रहता था और अगर प्रेमी कोई दूसरे विजातीय कबीले का हो तो लड़ाइयाँ छिड़ जाती थी। उन दिनों सेक्स के जीवन मूल्य अत्यंत सुदृढ़ थे। मुक्तिबोध रचनावली। मुक्तिबोध की मान्यता से स्पष्ट है कि एक वर्ग विहीन समाज में रोमांस और सेक्स के जीवन मूल्य व्यक्तिगत नहीं सामाजिक थे, किंतु आगे चलकर वर्ग विभाजित समाज व्यवस्था में शोषक शोषित वर्ग के आपसी रिश्तों के आधार पर निर्धारित होने के कारण उन पर शोषक सत्ता का व्यक्तिगत आधिपत्य स्थापित हो गया। उनकी साहित्य परंपरा समय समय पर उसे पुष्ट करती रही तथा नैतिकता और मर्यादा के स्थान आधार पर वर्जनामूलक आचार संहिता बनाती रही। टीकाएं और भाष्य लिखे जाते रहे पर मनुष्य के स्वाभाविक दुर्बलता को दबाया तो न जा सका। हाँ, व्यवस्था के क्रूर दमन के कारण भारतीय परंपरा खंडित होती रही और समाज में जाने अनजाने वेश्यावृत्ति की एक नई संस्कृति पनपने लगी जो आज के पूंजीवाद समाज में महानगरों और राजधानियों में आलिशान होटलों की छत्र छाया में निर्द्वंद भाव से फल फूल रही है। यदि नैतिकता और मर्यादा के स्थापित करने वाला वर्जनशीलता का बंधन इतना ही अमोघ होता तो महान मर्यादावादी कवि गोस्वामी तुलसीदास की मर्यादा भक्ति को आगे चलकर रीतिकाल के श्रृंगारिक श्लीलता में नंगा न होना पड़ता। अतः भारतीय संस्कृति की विविधता और जटिलता के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के ऐतिहासिक सामाजिक सृजनात्मक तत्वों को नजरअंदाज कर यदि जातीय संस्कृति की व्याख्या की जाती रही तो परंपरा बार बार खंडित होती रहेगी और साहित्य प्रतिमान भी टूटते रहेंगे। इससे पृथकतावाद को बढ़ावा मिलेगा और परंपरा प्रेमी दार्शनिक की तटस्थ दृष्टि से इसका दोष समाजव्यापी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के मध्य मरते रहेंगे। यह आकस्मिक नहीं है कि विद्यापति के प्रेम कविता में भक्ति अथवा श्रृंगार होने का निर्णय उसके वैष्णव अथवा स्वयं होने के आधार पर किया जाता है और वैष्णव कवि सूर्य की श्रृंगारिकता का समाधान करने के लिए आध्यात्मिक संगति लगानी पड़ती है। वस्तुतः प्रेम और सौंदर्य का जीवन मूल्य हमारी जातीय संस्कृति की परंपरा से जुड़ा हुआ मूल्य है। इसलिए वैष्णव कवियों को प्रेम कविता का मूल्यांकन करने के लिए अपनी संश्लिष्ट परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। न तो परंपरा अखंड है और न साहित्यिक प्रतिमा निशाश्वत है। मध्यकालीन लोक जागरण की दिशा पहचानते हुए ही बल्लभ जैसे वैष्णव आचार्यों ने पुरुषार्थ चतुष्टी के भीतर से प्रेमापमर्थो महान का उद्घोष अकारण नहीं किया था। वैष्णव कवियों का प्रेम वस्तुतः सामाजिक विद्रोह के रूप में व्यक्त हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम और सौंदर्य को भारतीय साहित्य की स्वाभाविक परंपरा में विवेचित किया है। उनके सौंदर्य बोध की अवधारणा का आधार कालिदास का साहित्य है। शकुंतला और पार्वती का सौंदर्य भोग और त्याग और सामंजस्यपूर्ण औदात्य की परम चरितार्थता और यह सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य द्विवेदी जी की सौंदर्य चेतना से अनुसूत है। उन्होंने सौंदर्य बोध को ललित्य बोध कहना उपयुक्त मानकर लालित्य तत्व की गरिमा में मांसा की है। इसके लिए उन्होंने चार मुख्य आधार स्वीकार किया है, मानव तत्व, लोक तत्व, मिथक तत्व और लालित्य तत्व। इस लालित्य तत्व के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य निर्मित सौंदर्य की विवेचना की है। इस प्रकार उनके सौंदर्य बोध के शास्त्रीय चिंतन में कबीर जैसे संतों की सहज साधना, वैष्णव कवियों की रूप उपासना, कविंद्र रविंद्र का आध्यात्मिक मानवतावाद, फ्रेजर आदि का नृतत्व शास्त्रीय मानवतावाद, लोक जीवन के अनुप्राणित करने वाले नृत्य, गीत, चित्र आदि कला रूपों तथा सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े मिथकों और भाषा के सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के निरूपण के साथ ही लोक जीवन के अनुभव की स्वकीय की सृजनात्मक भूमिका महत्वपूर्ण है। ललित चिंतन का मूल आधार आध्यात्मिक है और सेवागम की ज्ञान इच्छा और क्रियाशक्ति के रूप बंध की अपेक्षा में स्थिर किया गया है। इसका विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है, यह टुटकामा, इच्छा अनंत है, क्रिया शांत है, इच्छा नाद है, कुटिनुअम है, क्रिया बिंदु है, क्वांटम है, इच्छा गति है, क्रिया स्थिति है, गति और स्थिति का यह द्वंद्व चलता रहता है, इसे स्वरूप बनता है, छंद बनता है, संगीत बजता है, नृत्य बनता है, इच्छा काल है, क्रिया देश है, इसी देश काल के द्वंद्व से जीवन रूप लेता है, प्रवाह के रूप में, इसी के धर्माचरण बनता है, नैतिकता बनती है, इन सबको छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके जो सामग्र भाव है वह सौंदर्य का दूसरा रूप है। यह भाषा में, छंद में, मिथक रूप में, नृत्य में, गीत में, मूर्ति में, चित्त में, सदाचार में अपने आप को प्रकट करता है। एक प्राकृतिक सौंदर्य है, दूसरा मानवीय इच्छा शक्ति का विलास है। दूसरा सौंदर्य प्रथम द्वारा संचालित होता है, पर मनुष्य के अंतरतर की अपार इच्छा शक्ति को रूप देने का प्रयास केवल एक अनुभूति देकर पीड़ित हो जाता है, दूसरा अनुभूति के उत्पन्न होकर अनुभूति परंपरा का निर्माण करता है। इनकामापन लालित्य तत्व। दूसरे प्रकार का मानव निर्मित सौंदर्य ही आचार्य द्विवेदी के अनुसार ललित तत्व है। यह व्यष्ट चित्त के समस्त चित्त में समाहित होने के दार्शनिक आधार तथा व्यक्ति मुक्ति के स्थान पर सामाजिक मुक्ति के सामाजिक आधार को लेकर चलने वाला उनके पांडित्य की लोकोन्मुखता का परिचायक है। उनका दरिद्र रक्षा की भांति निचोड़ कर सर्व को दे देने वाला प्रिय भाव सूत्र इसी में विन्यस्त है और यह उनके साहित्य सिद्धांत में समाजवादी मानवतावाद के चिंतन का प्रमुख आधार भी है। लालित्य ही मनुष्य के ललित भावों के अभिव्यक्ति करता है, इसीलिए द्विवेदी जी प्रेम और माधुर्य को सौंदर्य विधायक तत्व मानते हैं, उसे जन्म जन्म के लालित्य बंधन के रूप में स्वीकार करते हैं। यह विश्वव्यापी सृजन शक्ति लालिमा का व्यष्ट विग्रह है और लालिता शिव की क्रीड़ा सखी है, जो शिव की लीला लालसा के समय शिव विश्व को प्रभामंडित करती है। इसी अर्थ में द्विवेदी जी मानव निर्मित सौंदर्य को लालित्य कहते हैं। लालित्य चिंतन में मिथक और यथार्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के सहारे द्विवेदी जी यह स्थापित करना चाहते हैं कि लोक रचना शिव की इच्छा शक्ति ललिता तथा कला सृष्टि के मूल में मनुष्य की इच्छा शक्ति है, इसीलिए मनुष्य की रचनाएं अपौरुषीय नहीं परिवर्तनशील है। पुनर्नवा में चंद्रमौली इसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, यह टुटकामा, दो तरह की रचनाएं होती हैं, एक तरह की रचनाएं विधाता की सृष्टि है, दूसरी तरह की रचनाएं मनुष्य की सृष्टि है, स्वयं मनुष्य पहले श्रेणी में आता है। यह टुटकामा पर और आगे देवरात कसर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन प्रकामा शास्त्रों में जो समाज संतुलन की व्यवस्था है वह मनुष्य की बनाई है, विधाता के इंगित पर नहीं बनी है। सारा अपौरुषीय समझा जाने वाला ज्ञान विधि विधान का अंग नहीं, मनुष्य के बनाए घर द्वार और ईंट पत्थर के समान वह भी आलोच्य और परिवर्तितव्य है। इन प्रकामा बंद पुनर्नवा। लोक में सुंदर की रक्षा तभी संभव है जब सामाजिक संतुलन बना रहे, इसीलिए परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में द्विवेदी जी के अनुसार निरंतर संस्कार न होता रहे तो व्यवस्थाएं तो टूटेंगे, धर्म को भी डुबो देंगी। आकस्मिक नहीं है कि हजार प्रसाद द्विवेदी अशोभन को शोभन और असुंदर को सुंदर बनाना साहित्यकार का मूल दायित्व तो मानते हैं। आचार्य द्विवेदी का यह मानना है कि यह टुटकामा, जो जात जितनी ही सौंदर्य प्रेमी होती है उससे मनुष्यता भी उतनी अधिक होती है। इन टुटकामा सौंदर्य बोध की यह संस्कृति ने केवल भारतीय प्राचीन भारत के कलात्मक विरोध में निरूपित की गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा जैसे सृजनात्मक कृतियों में भी उसे स्थापित किया गया है। इन उपन्यासों में नारी सौंदर्य की कलात्मकता का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है और सभी उपन्यासों में नृत्य का अनिवार्य आयोजन तथा चित्रकला के मनोरम वर्णन द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध के परिचायक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में एक मूर्ति चित्र का वर्णन है। इन उटकामा उनकी अर्ध स्मित नयन के ऊपर भूलताएं धारा यंत्र के ऊर्ध विक्षिप्त वयोरेखाओं के वक्रता के लिए नहीं थी बल्कि इस प्रकार छाई हुई थी कि वे नाशामंस के छत्र का काम दे रही थी। हाथ की उंगलियां स्वाभाविक थीं। गुप्तों की मूर्तिकला के साथ उनका दूर का संबंध भी नहीं था। समाधि और निद्रा में एक भेद होता है, अधिकांश कुषाण मूर्तियां उस भेद का स्मरण ही नहीं होने देती, पर यह मूर्ति ऐसा ओझ लिए हुई थी कि उसके रूम रूम में जागरूकता प्रकट हो रही थी। इस मूर्ति चित्र में मुख्यतः ओझ और जागरूकता को रेखांकित किया गया है, पर ऐतिहासिक प्रक्रिया में किसी कालखंड के विकसित कला सृष्टि और उसके सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य के रेखांकन में उपन्यासकार के सृजनात्मकता अद्भुत है। इसी प्रकार नागरक अभिरुचि के द्योतक चारुस्मिता का मयूर और पद्य नृत्य की चित्र प्रमणता तथा ताल लय समन्वित पद संचार गतिशीलता का मोहक सौंदर्य उड़ने के साथ ही उपन्यासकार ने लोक की प्राण चेतना के प्रतीक आभीर युवतियों के समुन्नति की आवेगतामय तथा ताल और लय के समन्वित संयम को तोड़ देने वाली काव्यमय उद्दामता का सौंदर्य उपन्यास कार्य कलात्मक सौंदर्य और सहज सौंदर्य के प्रतिमान है। कला साहित्य और संस्कृति को शास्त्र और लोक के सामंजस्य में देखना द्विवेदी जी के सौंदर्य की विशेषता है। इस प्रकार नृत्य गीत चित्र आदि का कलात्मक सौंदर्य उनके सभी उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। बाणभट्ट की अलंकृत भाषा प्राचीन साहित्य और मुख्यतः कालिदास के साहित्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य तथा मानवीय सौंदर्य को अपनी औपन्यासिक कृतियों में जिस सफलता के साथ आचार्य द्विवेदी ने पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है वह उनकी महान सृजनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। आचार्य द्विवेदी की लालित्य की व्याख्या चाहे जितनी भी दार्शनिक और मिथकीय आवरण में लिपटी हुई हो उसके जीवन के यथार्थ अनुभव को अनुप्राणित सहज सौंदर्य अभाव नहीं है। ट्रेन से यात्रा करते समय भी इस सहज सौंदर्य को देख लेना द्विवेदी जी की सदृष्टि के वैशिष्ट का प्रमाण है। वह लिखते हैं इनपुट कामा, जब कोई ग्राम बधूटी शायद वह तथाकथित छोटी जातियों की संतान थी, नीचे लाल घगरा और ऊपर धानी रंग की चादर और उसके ऊपर भी मुलायम मधुक पुष्पों की टोकरी लिए दिख जाती थी और जब अपने भूविलासमन विज्ञ कफांगों से भागती हुई ट्रेन को निहार देती थी तो हिंदी के रीतिकालीन साहित्य का खोखलापन मेरे निकट मूर्तिमान हो उठता था। इनवर्टेड कामन कल्पलता। उपभोक्तावादी दृष्टि वाले रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का पाठ पुस्तकों से पढ़ा था, जीवन से नहीं। इसीलिए उनके यहाँ विलासिता के बुभुच्छा को दिखाई पड़ती है, लेकिन वे श्रमशील किशोरी के भ्रुविलासान के भिग उपांगों का भोलापन अधिक से अधिक नीरभरी गगरी ढर काव्य की चमत्कारिक व्यंजना में देख पाते हैं। द्विवेदी जी की शालीन और संयम दृष्टि में श्रमशील किशोरी के भोले भाले सौंदर्य के जिस कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है उसे उत्पादित दृष्टि वाला कोई सर्जक कलाकार ही कर सकता है। यह शालीन और संयम दृष्टि महाप्राण निराला के सरोज स्मृति में तथा श्रमशील सहज सौंदर्य व तोड़ती पत्थर जैसी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। आचार्य द्विवेदी ने कालिदास के मेघदूत का पुनर्निर्माण किया है। मेघदूत एक पुरानी कहानी में प्रस्तुत है जिसकी एक व्याख्या कांस, उसमें उन्होंने कालिदास के पुष्पलावी सौंदर्य को मधुक पुष्पों की टोकरी वाली ग्राम बधूटी के सहज सौंदर्य संस्पर्श से और भी सृजनात्मक बना दिया है। द्विवेदी जी की व्याख्या है स्वात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व तो है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकास जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह वमनकारी तत्व तो नहीं है, उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ियों के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए उन पुष्पोद्यानों में आती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्प वालियाँ घर का काम काज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्यान्ह तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ब्लान हो उठता है, गंडस्थल में पसीने की धार बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आवरण रूप में विराजमान ली कमल मलिन हो उठते हैं। 3 वर्ष की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे, उनकी भ्रूभंग विलासिता से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मृत रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि सुचिस्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी के उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। यहाँ टुटकामावन मेघदूत एक पुरानी कहानी। सामंती विलासिता की ईंधन इकट्ठा करने को अभिशप्त श्रम जल स्नात नारियों में दिव्य शोभा और सात्विक सौंदर्य का संधान वही कर सकता है जिसमें असुंदर को सुंदर बनाने का सात्विक संकल्प हो, जो सामाजिक संतुलन के लिए सच्चे मन से चिंतित हो तथा जिसके साहित्य साधना का लक्ष्य सामान्य मनुष्य हो। इस सौंदर्य को स्थापित करने वाले द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रत्याख्यान करती है और उसके बद्रलोक में एक श्रमिक का पसीना शोषकों के पाप से ज्यादा बदबूदार माना जाता है। कालिदास के सौंदर्य के समानांतर आधुनिक रचनाशीलता में ढला हुआ द्विवेदी जी का पुनर्निर्मित सौंदर्य एक महान सर्जक सामर्थ्य का परिचायक है। आचार्य द्विवेदी साहित्य सर्जक की अपनी जमीन को अच्छी तरह पहचानते हैं तथा यह भी जानते हैं कि लोक मंगलकारी सुंदर साहित्य की रचना एक जटिल साधना है, इसीलिए साहित्यकारों को सावधान करते हुए लिखते हैं। ये नोटेड कामा, साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटा या बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर हो, वह दुनिया बाह्य सुंदरता के डूब में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं कर सकती। हमें उस बाह्य सौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्न निर्वसन जनता के बीच खड़े होकर आप परियों के सौंदर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते। अशोक के फूल। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है कि उसमें सुशिक्षा शक्ति है, और इस सृजनात्मक शक्ति के कारण ही वह द्विवेदी जी के साहित्य कला और संस्कृति के केंद्र में स्थापित है। जनता का अंत स्पंदन शीर्षक निबंध में द्विवेदी जी ने साहित्य, संगीत, शिल्प और कला मूल्यों की चर्चा को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी स्वदृश्य चरितार्थता का प्रश्न उठाया है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के केंद्रित चिंतन की सार्थकता इस बात में है कि उसे साधारण जनता तक पहुँचाया जाए, लेकिन स्थिति यह है कि इन अविराम प्रयत्नों का एक भी साधारण अंश साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए द्विवेदी जी की प्राथमिक चिंता यह है कि इन ऑर्डर का मांग कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रस ग्रहिका संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। इन ऑर्डर का मापन विचार प्रवाह जनता के इस अंत स्पंदन पर इतना बल देने के कारण यह है कि द्विवेदी जी शून्य में मुक्का मारने को पसंद करना नहीं पसंद करते, और अंत स्पंदन जैसे शब्दों ने अपने इर्द गिर्द जो वातावरण बना लिया है उसका व्यवहार करने वालों को भी कुछ ऐसे ही कौशल का प्रदर्शन करने वाला स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो वस्तु जनता के भीतर नहीं है उसको उद्बुद्ध करने की चेष्टा बेकार है, लेकिन उनका विश्वास है कि इन उटकामा जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में स्पंदित नहीं हो रही है। इसी उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रदर्शित करना वांछनीय है। यूनाइटेड कामा विचार प्रवाह ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि उनकी दृष्टि में यूनाइटेड कामा जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है, और छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। यूनाइटेड कामा लेकिन जनता को किसी बड़े उद्देश्य के प्रति विनियोजित करने के पहले वे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं, और उन्हें लगता है कि जो जनता भरपेट अन्न के लिए मोहताज है वह सौंदर्य की रक्षा कैसे कर सकती है। आज के क्रांतिकारी आंदोलनों की संघर्षशील भूमिका की अपेक्षा में आचार्य द्विवेदी की संतुलित मानवतावादी दृष्टि का आकलन करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, ये नोटेड कामा, यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने के विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंत स्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों से में क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसके लिए वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का वह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। ये नोटेड कामा दूसरी परंपरा की खोज। आचार्य द्विवेदी शास्त्रीय दृष्टि से सुंदर को अतिरिक्त मानते हुए भी समाज सापेक्ष क्रियाशील जीवन के लिए उसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मानना है कि ये नोटेड कामा जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन मान समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। इन नोटेड कामाबंद विचार प्रवाह द्विवेदी जी मनुष्यता की कीमत पर किसी क्रांति धर्मी संघर्ष का समर्थन नहीं करते। इतिहास की संभावनाओं में विश्वास करने के कारण वे नींव की मजबूती के लिए इसलिए महत्व देते हैं कि उनके सामने एक बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए वे जनता के अंत स्पंदन को आवश्यक मानते हैं। पारंपरिक जीवन मूल्यों की अपेक्षा वे वर्तमान पर का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन स्वप्नदर्शी बनकर नहीं। उन्होंने लिखा है, यह टुटकामा, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे दुख सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है, यह न तो संभव है न वांछनीय। ग्रंथावली। शास्त्र और लोक की परंपरा आधुनिकता के दोनों आत्मकता में वे अपने सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य की स्थापना करते हैं। इसके लिए वे समग्र मानव मंडली को मनुष्य की उच्चतर साधनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना वांछनीय मानते हैं और साथ ही उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल देते हैं। उनके अनुसार इन प्रतिकावा जो व्यक्ति इन दोनों बातों को स्वीकार करता है वह निष्क्रिय होकर नहीं रह सकता, उसे राजनीति और आर्थिक शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। नोटेड कामा बंद विचार प्रवाह। इस प्रकार जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। परंपरित शब्दावली की शास्त्रीय व्याख्या के बावजूद उसकी जमीन मनुष्य और समाज है। ललित चिंतन पर आधारित द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध को मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का विजातीय नहीं कहा जा सकता।